ओम शांति। सभी प्रेम से बोलें ओम शांति। आज का ये सुंदर सवेरा या कहें आज का ये शुभ दिन, जब चैत्र माह के नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं, उसका आज दूसरा दिन, जिसमें विशेष मां शारदे का पूजन होता है और मां शारदे को विद्या की देवी भी कहा जाता है। विद्या अर्थात प्रज्ञा, विजडम कह सकते हैं। तो आज का जो वक्त चल रहा है, मैं कहूंगी इसमें प्रज्ञा की ही कमी है। इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन विजडम, यहां एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि विजडम का अर्थ ही है वैल्यूज। तो आइए आज ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी अंतिम दिवस है, निर्णायक दिन है, जिसमें हम बहुत सी बातें स्वयं के जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए करेंगे और उसका प्रारंभ हम करने जा रहे हैं सवेरे के सत्र का। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रण देने जा रही हूँ आज के वक्ताओं को। मेरा अनुरोध है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हिज एक्सीलेंसी भ्राता दीप कुमार उपाध्याय जी, ऑनरेबल भ्राता भीमसेन दास प्रधान, भ्राता अशोक कुमार अत्री जी, भ्राता नवाब जफर मीर अब्दुल्ला, भ्राता वदूद सजीत जी, भ्राता राजीव निशाना जी, हम अपने मेहमानों का करतल ध्वनि से अभिनंदन करते रहेंगे। राजयोगिनी बहन अंबिका जी, राजयोगिनी बहन शुक्ला जी, राजयोगिनी बहन सविता जी, राजयोगिनी बहन रानी जी मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हम सभी भाई बहने आपका तालियों के माध्यम से अभिनंदन करते रहें। भ्राता सूरज भाई से भी अनुरोध है, स्थान ग्रहण करेंगे। भ्राता हरिलाल भाई जी आए, सभी हमारे विद्वत जन अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और एक बार पुनः हम सभी तालियों के द्वारा अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हमारे अनुभवी जनों का अभिनंदन, आज की सभा के विद्वानों का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय रानी दीदी जी अपना स्थान ग्रहण करेंगी। और अब हम आज के सत्र का प्रारंभ प्रभु स्मृति से करेंगे, क्योंकि शांति की शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है। शांति ही वो शक्ति है जिससे हम अपनी अंतर की अनेक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो आइए प्रभु स्मृति के माध्यम से अपना ये सत्र प्रारंभ करें। आप जहां भी बैठे हैं कुछ क्षणों के लिए प्रभु स्मृति में बैठेंगे, संगीत बजेगा और उसको सुनते हुए आप अपने अंदर ध्यान, मन को ध्यान में केंद्रित करें, मन को केंद्र करें।
कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।
आधार है अपने जीवन में मूल्य लाने का, अपने अंदर को सशक्त बनाने का। जो बात चल रही थी मां शारदे, विद्या की दायिनी सरस्वती या प्रज्ञा की देवी सरस्वती, उन्होंने भी अपने अंदर को इन्हीं मूल्यों को, शांति पवित्रता जैसे ओज को अपने अंदर में भरा था। मुझे याद आता है वो प्रसंग जो काफी प्रसिद्ध है, विवेकानंद जी का। उनके गुरु परमहंस ने भी उन्हें कहा, देखो तुम्हारी जो स्थिति है, पारिवारिक स्थिति काफी साधारण है, तुम माँ को मानने वाले हो, माँ के पास जाओ, धन की अर्जी डालो और उनसे धन की मांग करो। उनके कहने पर 3 बार वो माँ के पास गए, लेकिन उन्होंने मांगा तो केवल विद्या को मांगा। बार बार गए पर बार बार जाने के बाद भी उनके अंदर से धन वो जागृत मन में नहीं हुआ। कहा, नहीं माँ, मुझे विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, सच है। बुद्धि विद्या ही सब कुछ है, विजडम ही सब कुछ है, प्रज्ञा ही सब कुछ है। तो इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूँ कि वो फूलों के द्वारा, बैजेस के द्वारा हमारे बीच जो विद्वान अनुभवी जन विराजित हैं मंच पर, उनका अभिनंदन करेंगे और साथ साथ संगीत वो भी अभिनंदन में बहुत साथ देता है। तो अनुरोध कर रही हूँ हमारे बीच चेन्नई से पधारे सिंगर रामू महाराजापुरम आए, अपना गीत, स्वागत गीत प्रस्तुत करें। श्री रामू महाराजापुरम।
जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे है। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे है। ओ प्यारे लौट लो कहे कर, ओ प्यारे लौट लो कहे कर, हमें दिल में बसाए है। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे है। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे है। लगा लो योग अब शिव से, ए मौका फिर नया आएगा। समझ लो वक्त का नगमा, नहीं तो फिर पछताएगा। ओ वरदान बांटने आए, ओ वरदान बांटने आए, साथ में स्वर्ग लाए है। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे है। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे है। बना कर मन को पावन अब चले हम नब से भी ऊपर। बुलाते बाबा अपने संग, वतन में आओ अपने घर। बिछा कर पल के ओ अपनी, बिछा कर पल के ओ अपनी, वतन से हमें निहारे है। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे है। जिन्हें ढूंढे करते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे हैं। तरस को तरस थे अब तक वो हमको रोज मिलते हैं, कमल तम बन गया जीवन, खुशी के फूल खिलते हैं। ओ मेरे हमें हूं का, ओ मेरे हमें हूं का, वो सब कुछ हम पे वारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे हैं। बनाकर मन को पावन अब चले हम नभ से भी ऊपर, बुलाते बाबा अपने संग वतन में आओ अपने घर, बिछा कर पल के वो अपनी, बिछा कर पल के वो अपनी, वतन से हम निहारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे हैं। ओ प्यारे लाड लो कह कर, ओ प्यारे लाड लो कह कर, हमें दिल बन बसाए हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप धारे हैं। जिन्हें ढूंढे हम कर दर, ओ भगवन आप धारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम कर दर, ओ भगवन आप धारे हैं।
ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता रामू जी। जिन्हें ढूंढे थे दर दर, वो भगवान आप पधारे हैं, फिर देर किस बात की। बस आवश्यकता है उनसे लाभ लेने की, ये सत्य है, अपनी झोली भरने की। क्योंकि जिनके पास ज्ञान का धन है वही दुनिया में सबसे बड़े संपत्तिवान हैं। तो अपनी झोली खोलनी है और भरपूर करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, श्रीलंका से पधारी हुई कुमारी वी तुषी जी आकर स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। कुमारी वी तुषी जी श्रीलंका से आई और आज के दिन पर, अंतिम दिन पर, 80वें साल संस्था को हो चुके, वही हम मना रहे हैं। तो आइए जोरदार सबका अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा अभिनंदन करें तुषी जी। तालियों के साथ अभिनंदन करिए ताकि और सुंदर हो जाता है। सड़क पर चलते चलते लाल बत्ती हो जाती है, हम जहां होते हैं वहां ठहर जाते हैं, ट्रैफिक रुक जाता है। ठीक इसी प्रकार आप देख रहे होंगे संस्था में तीन दिन से आप हैं, यहां पर 5-6 बार दिन में रिकॉर्ड बसता, जो भी आप कार्य करते हैं वहां आप रुक जाते हैं। सवेरे प्रातः 7 बजे, फिर 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, रात्रि 9:30 बजे, जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग्स कहते हैं। आप जो कार्य कर रहे होते हैं 2-3 मिनट्स के लिए छोड़कर प्रभु स्मृति उसमें खो जाते हैं और पुनः अपने आप को, मन को सशक्त कर कार्य में लग जाते हैं। इसी प्रकार अभी हमने साइलेंस का वो गीत, ट्रैफिक कंट्रोल का वो गीत सुना था। अब हम पुनः आमंत्रण दे रहे हैं कुमारी तुषी जी को, तालियों के साथ आपका अभिवादन है, अभिवादन है, अभिवादन है। बहुत बहुत धन्यवाद तुषी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, और उसके लिए एक बार पुनः हम आपका तालियों के द्वारा अभिनंदन करते हैं, और बहनों से एक बार पुनः अनुरोध है, हमारा मंच सज चुका है, हमारे बीच साजिद साहब, जया, सूर्यन भाई जी एवं अन्य भी पधार चुके हैं, फूलों के द्वारा, बैजेस के द्वारा उनका अभिनंदन करें। ब्रह्मा कुमारी बहने, आपसे अनुरोध है, अत्री साहब भी पधार चुके हैं, आपका अभिनंदन करें। मृत्युंजय भाई जी कुमारी तुषी का अभिनंदन कर रहे हैं। तुषी जी बहुत दूर से हमारे बीच आई हैं श्रीलंका से, और आपका अभिनंदन चल रहा है, और मंच पर जो आज तीन विद्वजन हुए हैं उनका भी अभिनंदन चल रहा है। हम सब तालियों के द्वारा साथ देते रहेंगे, ये बहुत सुंदर विधि है सम्मान की, तालियों के साथ सम्मान करते रहिए। और साथ साथ अब मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, सम्मान की प्रक्रिया अभी चालू है, हमारे भाई साहब सम्मान करने में लगे हुए हैं, ये बहुत सुंदर विधि है, आदर, सम्मान, श्रद्धा, इसी से हम सब एक दूसरे के करीब भी आते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहें, जिसमें ये महोत्सव सम्मान का, अपने अंदर प्रेरणा लेने का, तो चलिए अब मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, हमारे मध्य विराजित हैं डॉक्टर सविता बहन, मेरा आपसे अनुरोध है, आप पिछले लगभग 35 वर्षों से राजयोग का अभ्यास भी कर रही हैं, जैसे कि मैंने शब्द इस्तेमाल किया डॉक्टर, आप डॉक्टर भी हैं, और साथ साथ हमारी सेवाओं के लिए अनेकानेक विंग्स बने हुए हैं, उसमें एक विंग है वुमन विंग, जिसकी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपसे अनुरोध है अपनी प्रेरणाएं, भावनाएं हमारे मध्य रखें, डॉक्टर सविता बहन।
ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विद्यमान माननीय विशिष्ट अतिथि, आदरणीय दीदियां, आप सभी का मैं आज के इस सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अपना अमूल्य समय निकालकर अपने अनुभवों का लाभ देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। आप सबका तहे दिल से विशेष अभिनंदन है, अभिनंदन है। हम पिछले दो दिनों से सुन रहे हैं वर्तमान समय विज्ञान और तकनीकी का युग है। विज्ञान तकनीकी ने हमें बहुत सुख सुविधा के साधन दिए हैं, लेकिन जीवन में सच्चा सुख नहीं है। उसका स्थान तनाव, चिंता और भय ने ले लिया है। आज कलयुग स्वार्थ प्रधान युग है, जिसमें हम मेरे को मेरा तो समझते ही हैं, लेकिन दूसरों का भी मेरा कैसे हो जाए, इस कोशिश में मनुष्य ज्यादा रहता है। और यही कारण है कि आज समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आध्यात्मिकता हमें परोपकार सिखाती है, नम्रता, सेवा भावना, समर्पण भाव, संतुष्टता सिखाती है। लेने की बजाय देने की भावना मन में होती है। कहते हैं नदी देती है, इसीलिए नदी का पानी मीठा होता है। सागर लेता रहता है, इसीलिए उसका पानी खारा होता है। तो यदि आप देते रहेंगे जीवन में, तो आपका जीवन मीठा होगा, सभी को आप सुख देंगे। और यदि आप लेते रहेंगे, तो जीवन खारे पानी के समान होगा। तो आध्यात्मिकता, ये परोपकार की भावना हमारे मध्य जागृत करती है, और हम दूसरों को प्रेम देते हैं, शांति देते हैं, सुख देते हैं, उनसे अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि हम परमात्मा से जो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, शक्ति के दाता हैं, सुख के दाता हैं, उनसे स्वयं को भरपूर करते हैं। तो हम सहज दे पाते हैं, वो मुझे प्रेम दे, वो मुझे सुख दे, तो मैं प्रेम दूं या सुख दूं, नहीं, लेकिन मुझे देना है, क्योंकि आज सभी के पास इनकी कमी है, तो मुझे दाता बनना है। और दूसरा, आध्यात्मिकता हमें आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परिवर्तन करना सिखाती है। हम अंतर्मुखी बनते हैं। सामान्यतः जीवन में हम दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों की शिकायत करते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, उनसे तुलना करते हैं, और उनसे हम प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, और इससे अपने जीवन को हम दुखी बना लेते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं, तो हमें समझ मिलती है कि दूसरों के प्रति जो भी मेरी सोच और भावनाएं हैं, उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। मुझे अपने नजरिए में परिवर्तन लाने की जरूरत है, और राजयोग के द्वारा अपनी सोच में जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, वो हम ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने एक बार पूछा, आप मेडिटेशन करते हैं, आपने क्या पाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या पाया है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने अपने जीवन में ईर्ष्या, क्रोध, नफरत और द्वेष को जरूर खो दिया है। तो सबसे पहले हम अपनी नकारात्मकता को खो देते हैं। चाणक्य जो प्रकांड विद्यमान हुए हैं हमारे इतिहास में, उनसे किसी ने एक प्रश्न पूछा, शिष्य ने कुछ प्रश्न पूछे, तो उन्होंने उसके बहुत सुंदर उत्तर दिए। उससे पूछा विष क्या है, तो उन्होंने कहा कि आवश्यकता से अधिक जो कुछ भी हमारे पास है वो विष है। चाहे वो धन है, शक्ति है, महत्वाकांक्षा है, लोभ है, क्रोध है, अहम है, आलस्य है, ये सब विष की तरह है। फिर पूछा भय क्या है, तो भय जीवन की अनिश्चितता में अस्वीकार भाव, ये भय है। जब हम अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तो भय समाप्त हो जाता है और वो एडवेंचर हो जाता है। फिर पूछा ईर्ष्या क्या है, तो कहा किसी की अच्छाई को अस्वीकार करना ये ईर्ष्या है। और जब हम दूसरों की अच्छाई को स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रेरणा हो जाती है। फिर पूछा क्रोध क्या है, तो कहा जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको अस्वीकार करना, और यदि हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो सहन शक्ति हो जाती है। फिर कहा नफरत क्या है, तो कहा व्यक्ति जो है जैसा है उसे स्वीकार न करना, ये नफरत है। और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो प्रेम है, वही प्रेम हो जाता है। एक बार एक शिष्य की सेवा भावना से प्रभावित होकर के गुरु ने उसे एक दर्पण दिया, कहा कि ये दर्पण किसी के भी मन के भावों को बता सकता है। तो उसे बड़ा अद्भुत लगा, तो उसने सबसे पहले वो दर्पण लेकर के अपने गुरु के सामने कर दिया। तो उसने देखा कि गुरु में क्रोध है, अहंकार है, तो उसको बहुत ठेस पहुंची कि जिस गुरु को मैं अपना आदर्श मानता हूं उस गुरु के अंदर भी नकारात्मकता है, अवगुण है। फिर उसने उस दर्पण को अन्य अलग अलग लोगों के सामने रखा, उसके मित्र थे, परिचित थे, सभी में उसको दुर्गुण दिखाई दिए। और फिर वो निराश होकर के वापस वो दर्पण लेकर के अपने गुरु के पास आया कि गुरुजी मुझे इस दर्पण से कोई लाभ नहीं हो रहा है, मेरा मन इससे और निराशा की ओर जा रहा है। तो गुरु ने तुरंत वो दर्पण उसके सामने कर दिया। तो उसने देखा कि मेरे में भी अनेक दुर्गुण हैं। तो गुरु ने उसको समझाया कि ये दर्पण मैंने तुम्हें अपने आप को देखने के लिए दिया था ताकि तुम अपने दुर्गुण देख करके अपने में सुधार ला सको, लेकिन इस दर्पण से तुमने दूसरों को देखना शुरू कर दिया। तो आध्यात्मिकता वो दर्पण हमें देता है जिसमें हम स्वयं का दर्शन करते हैं और स्वयं का परिवर्तन हम लाते हैं और हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह से बदलने लगता है। तो मैं समझती हूँ कि आध्यात्मिकता के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, ये आप सुन भी रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन सविता जी। आध्यात्मिकता हमें दर्पण देती है। मुझे याद आ रहा था कि जो वक्त चल रहा है वो ब्रांडेड का जमाना है, हर चीज ब्रांडेड चाहिए। कपड़ा पहनने को लीजिए, जीन्स ब्रांडेड चाहिए, शर्ट्स ब्रांडेड चाहिए, हर चीज कंपनी की चाहिए। और मैं, जब मैं की बात करते हैं तो वहां हमारी क्वालिटीज वो भी ब्रांडेड होनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। और आध्यात्मिकता वो अपने अंदर जागृति प्रदान करती है। तो आइए हम आगे और बढ़ते हैं और हम अनुरोध करने जा रहे हैं, हमारे मध्य विराजित हैं हिज एक्सीलेंसी मिस्टर दीप कुमार उपाध्याय जी। आप नेपाल से पधारे हैं, एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया। मेरा आपसे अनुरोध है आप अपनी भावनाएं हमारे बीच रखेंगे। आदरणीय भ्राता उपाध्याय जी,
हमारे राज्यों के अत्यंत ज्ञाता राजयोगिनी राजयोगी आमंत्रित गण उपस्थित भ्राता एवं बहनों, आज हमें बड़ा अपार हर्ष है कि ब्रह्म कुमारी संस्था के 18th एनिवर्सरी के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के कंक्लूडिंग सेशन में हमें भी निमंत्रण के साथ भाग लेने का मौका मिला। हम शुरू में नहीं आ सके, इसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी है, फिर भी हम हैं क्योंकि समय ही महान है, बलवान है, भगवान भी है। इससे पहले हम 13 महीना भी यहाँ राजदूत के रूप में रहे। उस साल में आप लोगों को मालूम है कि नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप गया था, इसके बाद में उस सामान के सप्लाई में अवरोध के नाते नेपाली जनताओं को काफी कष्ट झेलना पड़ा। तब यहाँ सहने पर भी उस समय नहीं आ सके, तो कुछ पॉलिटिकल डिसीजन रीजन के नाते से फिर हमें 6 महीना के लिए वापस जाना पड़ा। और शायद परमपिता परमेश्वर का, आप लोगों का प्रेम मोहब्बत का ही शायद बात होगा, फिर हम 5 महीने से यहाँ नेपाल के राजदूत के रूप में दिल्ली में कार्यरत हैं। हम आज यहाँ उपस्थित हैं। आज इस पावन अवसर में हम ब्रह्म कुमारी संस्था आज एक सामाजिक आंदोलन के रूप में सारा विश्व में ये प्रख्यात है, इसका ख्याति है। हम खास करके परम आदरणीय दादी जानकी, दादी गुलजार तथा दादी रत्नमोहिनी जी लगाए इस संस्था से जुड़े हुए जो आज तक यहाँ तक लाने के लिए आप सब लोगों को मैं हार्दिक नमन के साथ बधाई ज्ञापन करना चाहता हूँ। साथ साथ में नेपाल में भी ब्रह्म कुमारी संस्था का एक सामाजिक ऐसा अविरल यात्रा है वो प्रशंसा योग्य है। इस नाते हम इस पावन अवसर में समस्त नेपाली जनता की तरफ से इस संस्था के और नेपाल के भी सभी इसमें जो भी भाई बहन लोग जुटे हैं हम सबके नमन के साथ हार्दिक बधाई ज्ञापन करना चाहता हूँ। आज विश्व में आध्यात्मिकता न हो तो हम और कहाँ पहुंचते। हम सोचें ज्यादा दूर न जाएं, जन्म और मृत्यु को देखें कोई विभेद नहीं है, किसी भी जन्म का किसी भी मृत्यु में विभेद नहीं है, तो बाकी विभेद तो बीच में हम ही से सृजित है। इस नाते इस ये जो विश्व को एक शांति का अभाव है इसको प्रदान करने के लिए जो सामाजिक आंदोलन के रूप में जहां धर्म का विभेद नहीं है, जहां कोई भी ऊंचा नीचा का विभेद नहीं है, इस एक आंदोलन जो ब्रह्म कुमारी का आंदोलन है राजयुग के माध्यम से ये अनुपम है। इस नाते हमें आज प्रसन्नता होती है कि संस्था जब जब अपनी गरिमा पर ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वहां नेतृत्व का विवाद, वहां पारदर्शिता का विवाद, तमाम विवादे समस्या खड़ी होती है, लेकिन ब्रह्म कुमारी एकमात्र ऐसा अछूता संस्था है इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में आज तक इस किस्म का कोई किस्म का इसमें जैसे यानी आपका विवाद या उंगली नहीं उठा है। ये बहुत बड़ी चीज है। हम हृदय से इसको नमन करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में इस संस्था को एक अंतर्राष्ट्रीय एक इसका सामाजिक आंदोलन के रूप में जीवन पद्धति को कैसे हम इसको अपना सोचे, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने बारे में खुद मालिक है। सोल और सुप्रीम सोल के बीच में नो इन बिटवीन, अपने हम कहां पहुंचे, अपना जीवन पद्धति कैसे बनाएं, ये बहुत परखने लायक है। हम राज्यों के बहुत साधारण सा एक विद्यार्थी हैं, इस नाते इसके बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। इतना ही नम्र निवेदन हम करना चाहेंगे कि ये अनोखा विषय है। हम आज जैसे विश्व में सब कुछ संभव है, आपके पास ऐश्वर्य है, धन दौलत है, तो सब कुछ संभव है, लेकिन एक ही चीज नहीं संभव है, वो क्या, आपके हमारे मन में शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति, देश में शांति, विश्व में शांति। ये असंभव चीज को कैसे संभव करें उसका एक हमारे छोटी सी अरदास से, हमारे छोटी सी अनुभव के आधार से निवेदन करना चाहते हैं कि राजयोग एक बहुत इसके लिए प्रामाणिक ये आपके जगह, ये ब्रह्म कुमारी संस्था प्रामाणिक जगह और राजयोग की जैसे आपके प्रामाणिक आपकी साधना हो सकता है, इसके तरफ हम ध्यान दें। आज जो भी जैसे हमारे बीच में समस्याएं हैं उसको समाधान के तरफ हम लोगों को सोचना जरूरी है, क्योंकि आज एक तरफ हम शांति की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कोई जैसे यानी आपको विनाश में भी शांति देखते हैं, अपना जैसे उसमें मोक्ष देखते हैं। आज जैसे तमाम किस्म की जैसे सुसाइड वाले, जैसे आपके सुसाइड बम्बर वाले, सुसाइड जैसे रस्ता वाले, तमाम किस्म की बातें हैं, तो ये सब कहां से क्यों उठ रहा है, इसके तरफ हम लोगों को ध्यान देना है। हम अंतिम में यही निवेदन करना चाहेंगे एज एन एम्बेसडर ऑफ नेपाल इट इज माई ड्यूटी टू, खास करके नेपाल और भारत के बीच में जो अनोखा संबंध है, भूगोल का संबंध है, इतिहास का संबंध है, संस्कृति सभ्यता हमारी रहन सहन ऐसा है कि कोई सीमाना में अवरोध नहीं है, खुला सीमाना है, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीसा नहीं। आप सभी लोगों को हम निमंत्रण देना चाहते हैं हृदय से कि आप जरूर नेपाल पधारें, नेपाल भारत के बीच की मित्रता को और प्रगाढ़ता देने के लिए आपके मन में शांति, आपके परिवार में शांति, आपके जैसे समाज और देश में शांति, विश्व में शांति के वास्ते भी हम लोग मिलकर चलने के लिए ये देशी यानी आपका एक विशेष अहम भूमिका इस समय का मांग है। इस तरह से आप लोग जरूर नेपाल पधारें और इस शांति के अभियान में आप लोग नेपाल को भी साथ साथ में लेके हम लोग चलना चाहते हैं। हम लोग एक ही परिवार के, खास करके नेपाल और भारत के लिए, इसी नाते हम अपना वाणी को विराम देना चाहते हैं। अंतिम में यही निवेदन करेंगे कि आप और हम जो जहां हैं वी आर फुल्ली ऑथराइज टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज, नोबडी एल्स, दैट्स वी मस्ट थिंक आवर सेल्फ व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ, व्हाट शुड बी द एम ऑफ लाइफ, व्हाट शुड बी द वे ऑफ लाइफ। प्लीज वी शुड ट्राई टू study Rajyog meditation and try to be a learner, try to be a student. Thank you very much. Aap sabhi logo bahut bahut dhanyawad.
Bahut bahut dhanyawad mananiye upadhyay ji, aapne bahut sundar disha di ki Rajyog jeevan ke liye paddhati hai, shanti ko apnane ki ek sundar प्रक्रिया है। जीवन में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, समाज में शांति चाहिए, अपने अंदर ये मूल्यों को बढ़ाना है। तो अपनी बात चल रही थी कि यही हमें अंदर में सचमुच ये अंदर का ब्रांड, ये ब्रांडेड कि हमारी क्वालिटी बढ़ जाए, स्वयं की शक्ति, हमारा नजरिया, हमारा सोच सुंदर हो जाए और हम आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हमारे मध्य सम्माननीय भ्राता मिस्टर भीमसेन दास प्रधान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विराजित हैं। आप भी नेपाल से हैं, आपसे अनुरोध है आप अपने विचार हमारे मध्य रखेंगे। आदरणीय भ्राता भीमसेन दास प्रधान जी, नेपाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपका तालियों के द्वारा अभिनंदन है। अभिनंदन।
सभी ब्रह्म कुमारी के भक्तजन पर प्रणाम। आदरणीय हिज एक्सलेन्सी एम्बेसडर दिगमार उपाध्यायज्यू, माता श्री ब्रह्म कुमारजी, दैसमय आसन अतिथिगणहरू, मैं पश्चिमनाथ का देश वो आराध्य देव का देश नेपाल से तत्व करके आ रहा हूं। हम सब लोग आपको विश्व शांति के लिए भगवान पशुपतिनाथ आप सबको शांति प्रदान करें। दस वर्ष हो गए मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ। ब्रह्म कुमारी काठमांडू का केंद्र जो प्रमुख कार्यालय है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र में ही रहे र ब्रह्म कुमारी का थीम वो धार्मिक थीम नहीं, ब्रह्म कुमारी धर्म नहीं है, ये एक ऐसी दर्शन है जो आत्मा और परमात्मा को जो कनेक्टिविटी करते रहते हैं हम, वही है ब्रह्म कुमारी। अगर वो धर्म होता है तो आज ब्रह्म कुमारी विवाद में
उलझा हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि धर्म नहीं, ये दर्शन है। ये ओम शांति, ओम का मतलब ब्रह्मांड, और वो शांति ब्रह्मांड की शांति लिए जिस उद्देश्य में ब्रह्मांड ओम शांति ने अपने कार्य किया है वो प्रशंसनीय है। इसीलिए ब्रह्म कुमारी दिव्य प्रकाश के जोर से आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। अगर वो धर्म हो, हमने देखा है श्रीलंका में देखा है, भारत में देखा है, पाकिस्तान भारत का युद्ध भी देखा है, वो धर्म भी हुआ है। एक धर्म ने अन्य धर्म के लिए आदर नहीं करना, यही अशांति का उदय। तो आज ब्रह्म कुमारी ने सभी धर्म को इनकॉर्पोरेट किया इस आंदोलन में, इसलिए ब्रह्म कुमारी जो दर्शन है वो सेक्युलरिज्म है। इसमें क्राइस्ट में आस्था रखने के भक्तजन भी यही ब्रह्म कुमारी है, हिंदू प्रति आस्था रखने के हिंदू धर्मावलंबी भी ब्रह्म कुमारी की पे आसन है, मुस्लिम भी है, अल्लाह को मानने अल्लाह का वो मोहम्मद का अनुयायी भी इसी धर्म है। बहुत सारे धर्म इसमें अनुबंधित किया है। इसे ब्रह्म कुमारी आज विश्व पर जैसे सूर्य का प्रकाश सभी को प्रकाश देता है, ब्रह्म कुमारी इसी से आगे प्रकाश देता जा रहा है। दादा पिता श्री ब्रह्मा वो अमर है, उसका प्रकाश हमारे जीवन में दे रहा है वो दादा श्री। एक घटना अपनी जिंदगी में एक घटना हुआ, मैं आपको प्रे करने से अपने डिपार्टेड साउल को, अपने माता श्री पिताश्री, अपने गुरुजन को बारंबार समझने से कहीं न कहीं जिंदगी में किसी क्राइसिस अगर आ गया तो वो राहत देता है। ये घटना ऐसे मेरे जीवन में हुआ। 5 वर्ष पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ, उस वक्त वो कुछ नहीं समझता, इतना दर्द होता है हार्ट अटैक में, कैसे दर्द को राहत मिली, कैसे शांति मिली वही सोचता रहेगा। मानव तो अपने को लिए बहुत सेल्फिश होता है ना, कुछ समझ में आया न अपना बेटा बेटी, न अपना माता पिता, न अपना बीबी, सिर्फ अपना वही जो पीड़ा है, जो दर्द है वही समझता है। बट व्हेन आई वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल अनकॉन्शियस स्टेट आफ्टर ऑपरेशन, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर साहब ये क्या है मेरे ये बॉडी में नीला नीला दाम? तो डॉक्टर राव ने कहा आपको तो भगवान पशुपतिनाथ ने बचा लिया, यू आर वर्चुअली डेड दैट टाइम, आफ्टर इलेक्ट्रिक शॉक यू अगेन रिवाइव योर लाइफ एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पशुपतिनाथ। मैं सवेरे अपना प्रातःकालीन जो क्रिया है उठने के बाद नुहाई धोए के बाद मैं पशुपतिनाथ से जल चढ़ाता रहूंगा, उन्होंने मुझको आशीष दिया। इसलिए मैं कह रहा दादाजी को समझने के लिए अपने जीवन में कयों असुविधा आते हैं, कयों दुख आते हैं, उसके राहत देने के लिए अगर आपने जीवन पद्धति में जो हम सेल्फ केयर के साथ प्रे करते वो करना चाहिए, मेरा मतलब वो है कि वो करने से आपको कहीं न कहीं क्राइसिस में वो दिव्य शक्ति डिवाइन पावर आपको बचाते हैं। दैट वॉज इंसिडेंट दैट हैपेंड टू माई लाइफ। इसलिए ब्रह्म कुमारी के सहभागी होने के, इसके अंश बनने के लिए जीवन में बहुत सुख शांति मिलती रहेगी। इसलिए मैंने भी सोचा जब मैं काठमांडू में हमारा दादाजी है उन्होंने बराबर हमको कार्यक्रम में इनवाइट करते रहेगी तो हम जाएंगे वहां से बातचीत होगी वहां के प्रवचन सुनने के बाद अपने को बहुत शांति मिलती रही। जैसे ब्रह्म कुमारी ने जो आज ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया है ये विश्व शांति के लिए है मानव शांति के लिए है तो हमारे जीवन जो वे ऑफ लाइफ है इसको स्पिरिचुअलिटी की जाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही बात करकर यहाँ से विदा होगी और अंत में जो आपने इस संस्था ने हम नेपाल का प्रतिनिधि हमारे माननीय मदन अमरजी भी है हम दोनों नेपाल के से रिप्रेजेंट करके यहाँ आया हूँ और एम्बेसडर के साथ भी आज मुलाकात भी हुई ये मौका भी जो दिया इसके लिए धन्यवाद अर्पित करके विदा होगी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता माननीय भ्राता भीमसेन दास जी। ये सत्य है कि आध्यात्मिकता हमें आगे की ओर ले जाती है और सफलता को प्राप्त करने की एक पहली शर्त भी यही है कि आप असंभव को भूल जाएं, संभव बनाने की अपनी क्षमताओं पर ध्यान दें। असंभव शब्द आध्यात्मिकता के लिए नहीं है, संभव है सब कुछ। हमें अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाना है और अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अनुरोध करने जा रही हूँ हमारे बीच विराजित हैं हमारे पूर्व के एम्बेसडर ऑफ इंडिया भ्राता अशोक कुमार अत्री जी। मेरा आपसे निवेदन है आप अपने विचार अपने भावनाएं हमारे मध्य रखेंगे। भ्राता अशोक कुमार अत्री जी तालियों के साथ हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं। अत्री साहब को
ओम शांति। महामहिम दीप कुमार उपाध्याय जी भारत में नेपाल के राजदूत श्री भीमसेन दास प्रधान जी नेपाल के मेंबर पार्लियामेंट मंच पर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जी राजयोगी ब्रह्मा कुमार नवाब जफर मीर अब्दुल्ला जी और सब मंच पर उपस्थित महानुभाव लगभग चार दशक भारत के राजनयिक रहने के बाद कई जगह राजदूत रहने के बाद जब कुछ देर पहले हम सेवानिवृत्त हुए तो मन में सोचा कि अब मंच पर बैठना और भाषण देना नहीं पड़ेगा लेकिन जल्दी सोच लिया हमें जल्दी थी कि वापस धरती पर आए और एक आम नागरिक की तरह एक आम श्रद्धालु की तरह जीवन व्यतीत करें। ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी ने जब आग्रह किया हमें बताया गया तो हमारा उस पर उत्तर था कि आपका आग्रह हमारे लिए हमेशा निर्देश है निर्देश ही रहेगा। सो मुझे प्रसन्नता है कि यहां मंच पर आकर आपके साथ अपनी खुशी प्रकट करने का हमें अवसर मिला। प्रसन्नता कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के 80 वर्ष पूरे होने का हर्ष हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 40 साल राजदूत या राजनयिक रहो, उसके बाद भारत वापस आओ तो पता लगता है कि 4 दशक अंग्रेजी बोल बोल के मुंह जो थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हिंदी बोलने में थोड़ी कोशिश करनी पड़ रही है। हमारे जीवन में बहुत से देशों में ब्रह्मा कुमारी सेंटरों के साथ हमें मेलजोल का अवसर मिला। नेपाल की बात हो रही थी, 3.5 साल हम नेपाल में रहे। अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारी केंद्र, अरब देशों में रहने का अवसर मिला हमें। वहां ब्रह्मा कुमारी केंद्रों से हमारा मेलजोल रहा। यूएसए में रहा, यूरोप में रहा, हर जगह जब भी रक्षाबंधन का दिन आता था तो उस देश में रहने वाली ब्रह्मा कुमारियां, हमारी बहनें आकर हमें एक बार फिर रक्षाबंधन का धागा बांधती थी। भाव विभोर होते थे हम कि भारत से इतने दूर रहने के बावजूद हमारा ये बंधन कितना पक्का है। हम भारत के राजनयिक रहते हुए हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन, हमारा काम करने का तरीका ऐसा हो कि उस देश में रहने वाले लोग ये समझें कि भारतीय ऐसे हैं। बहुत कोशिश करते थे इसमें, पर मैं आज आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार जिन देशों में, सारे विश्व में जहां जहां रहते हैं, भारत के सबसे बड़े राजदूत वो हैं। वो भारत की संस्कृति, भारत के अध्यात्म, भारत का व्यावहारिक ज्ञान वो अपने जीवन से सबको सिखाते हैं। हमारा सिर हमेशा गौरव से ऊंचा रहा इस बात से कि ये हमारे सबसे अच्छे भारत के बाहर भी प्रतिनिधि हैं। जो भारत के बाहर के देशों से, बहुत से देशों से यहां पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सब श्रद्धालु आए हुए हैं, वो मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां जब हम आए, स्टेज पर बहुत से महानुभाव, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मीडिया के लोग और बड़ी बड़ी अचीवमेंट वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, कई लोग यहां पर बोले और उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि इतना बड़ा कार्यक्रम किस सुचारू तरीके से, जैसे कह सकते हैं एकदम एफर्टलेसली यहां पर हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत और भारत से बाहर ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमारों से जो हमने उनके कार्यशैली को देखा है, हमें इतना आश्चर्य नहीं हुआ। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब कुछ इस तरह से चलेगा कि जैसे बाबा की कृपा है, हर कोई अपना कार्य कर रहा है, हर कोई अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब पहली बार जीवन में दादी जानकी जी के दर्शन किए, दादी रतन मोहिनी जी ने हमें खुद अपने जन्मदिन का केक खिलाया, तब हमें मालूम हुआ कि यह शक्ति किनके द्वारा यहां पर आ रही है, कौन है जो ईश्वरी शक्ति को हम सब में यहां पर ला रहे हैं और किनका आशीर्वाद यहां पर है। 80 साल हुए, ये शक्ति ऐसी है कि अनगिनत वर्षों अनगिनत दशकों तक ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। एक बार फिर मैं आप सब से इस खुशी में शामिल होते हुए दादी जानकी जी को एक अपना मैसेज देना चाहता हूं। मां, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ए मां, ए मां, तेरा आशीर्वाद सब पर हमेशा रहे। ओम शांति।
बहुत सुंदर भाव भ्राता अत्री जी ने हमारे सामने रखे। संस्था संस्थापक और इस समय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी, सबके लिए आपने बहुत सुंदर भावनाएं रखी, सराहा। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि कार्य विधि को तो आपने सराहा है, इसे कहीं अधिक हमारी चाहना है। हम सब इस संस्था के एक सदस्य हैं, साथी हैं, वो हमारा पिता है, परम पिता परमेश्वर जो शक्ति कार्य कर रही है, हम सब उसके बच्चे हैं, ये परिवार है, ये अलौकिक परिवार है। आइए अपना कदम बढ़ाइए और अपना यही शुद्ध परिवार में आकर के जीवन शुद्ध और सात्विक बनाइए। क्योंकि परिवार है तो यहाँ समर्पण है, यहाँ पर सेवा भाव है, जो बहुत से हमारे भाई बहनों ने कहा यहाँ कौन कार्य कर रहा है पता नहीं, सहज भाव से सब कुछ होता है। यहाँ समर्पण मेहता है, सेवा भाव है, और यही समर्पण मेहता सेवा भाव योग्यता जागृत करती है और कार्य सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठ जाता है। और अब मैं आमंत्रण आगे देने जा रही हूँ, हमारे बीच बच्चे इंतजार कर रहे हैं मयूर नृत्य के लिए। मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ, ये त्रिची से पधारे हैं, श्री रंगम भारत नाट्यशाला से, आपसे अनुरोध है अपना मयूर नृत्य प्रस्तुत करें। और तालियों के साथ, ये हमारी विधि भूले नहीं, तालियों के साथ आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन बच्चों का। और आगे बढ़ते हैं, आमंत्रण दे रहे हैं हमारे मध्य अनुभवी राजयोगिनी आदरणीय शुक्ला बेन जी विराजित हैं। आप ब्रह्मा बाबा के समय से ही राजयोग का अभ्यास कहूं, ज्ञान योग का अभ्यास कहूं कर रही हैं, साथ साथ हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी विंग है उसकी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपसे अनुरोध है हमें प्रेरणाएं दें आगे बढ़ने की, आदरणीय बहन जी शुक्ला बहन जी, तालियों के साथ आपका हम आमंत्रण दे रहे हैं।
ओम शांति, सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन आदरणीय वक्तागण, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको देखकर मुझे एक संकल्प आ रहा था कि आप सभी एक सुंदर संकल्प अपने अंदर सजो करके आए हैं कि विश्व परिवर्तन की वेला में हम प्रवेश करें या सहयोगी बन जाएं। अब वो संकल्प जो शुभ संकल्प आप सभी अपने साथ सजो के आए हैं, वो संकल्प कैसे पूरा हो उसकी विधि निधि सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति इस तरह की मुकुटमणि है, संस्कृति श्रेष्ठ संस्कारों से बनती है, श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण आध्यात्मिक क्षेत्र से ही हो सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र हमें सद्भाव, सच्चिंतन, शुभ चिंतन, समर्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन की धारा को प्रवाहित करती है और वो चिंतन समाज परिवार को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करती है। तीन दिन से आप सभी एक बात बार बार सुन रहे थे कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अब परिवर्तन सहज और सरल कैसे हो, हम सब सहज और सरल तरीके से परिवर्तन को कैसे लाएं, उसके लिए तीन सूत्रों की आवश्यकता है। पहला सूत्र है ज्ञान, दूसरा सूत्र है इच्छा शक्ति, तीसरा सूत्र है परिवर्तन की कला। ये तीनों सूत्र से अगर हम अपने आप को बांध लेते हैं तो श्रेष्ठ जीवन का निर्माण हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। परंतु ये भी हम जानते हैं कि संसार के अंदर ऐसी कोई महान आत्मा या महान हस्ती नहीं जो हम सबको इन तीन सूत्रों के अंदर अच्छी प्रकार से बांधे और हमारे अंदर सकारात्मक चिंतन की धारा को बहाए। तो मुझे आप सबको ये शुभ सूचना देते हुए बहुत हर्ष होता है कि इन तीन सूत्रों को बांधने के लिए ज्ञान, इच्छा शक्ति, क्योंकि जब तक हम सबके अंदर इच्छा शक्ति पैदा नहीं हुई या परिवर्तन की कला नहीं आई तब तक हम महान जीवन ना जी सकते हैं ना अपने द्वारा औरों को सद प्रेरणाएं दे सकते हैं। तो ये एकमात्र जिनको हम बड़े प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है और शिव ही बीज रूप ज्ञान के सागर पतित पावन गति सदगति विधाता है, वह पिता। आज की वेला, शुभ वेला में, जिसको हम संगम बोलते हैं, इस संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के रथ पर सवार होकर अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की सुमति हम सबको प्रदान करते हैं। उसके लिए परमात्मा पिता हम बच्चों को यही आदेश और संदेश नित्य देते हैं कि बच्चे जीवन की प्रयोगशाला के अंदर इस ज्ञान नेत्र को सदा जागृत रखना, क्योंकि जब तक ये ज्ञान नेत्र सदा जागृत नहीं रहेगा या सत्य का पूर्ण नीति से हमें बोध नहीं होगा, तब तक शक्तियां, दिव्य गुण, संपन्नता हमारे जीवन के अंदर नहीं आ सकती है। तो इसके लिए परमात्मा पिता ज्ञान नेत्र देकर सत्य समृतियों को जागृत करते हैं और उस सत्य समृतियों के आधार से ही श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, संस्कार, दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति आ जाती है, जिस शक्ति के द्वारा जन्म जन्मांतर से जो विकृत मनोवृत्तियां हम सबके जीवन के अंदर पनप रही है, वो वृत्तियां सत्य और शाश्वत समृतियों से अपने आप धीरे धीरे चेंज होने लगती है और हमारे अंदर आत्मिक बल, परमात्म पिता के प्रति वफादारी, ईमानदारी पैदा हो जाती है। क्योंकि आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय इसकी नींव है, श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की नींव आत्मनिश्चय और परमात्म निश्चय है। जो निश्चय उस परम शक्ति के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों से ही प्राप्त होता है। परमात्मा पिता सदा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम सबका इसी बात पर आवाहन करते हैं, इसी बात पे आदेश और संदेश देते हैं कि बच्चे आत्मचिंतन ही सद्भाव, सदाचार और सद्व्यवहारों का सूचक है या आधारशिला है। अगर हम चाहते हैं हम आने वाले भविष्य के अंदर कुछ योगदान करें, तो उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि जब तक आत्मचिंतन के द्वारा सद्भाव और सदाचार और स्वस्मृतियों की जागृति नहीं हुई, चेतना जागृत नहीं हुई, तब तक हम उसके अंदर योगदान नहीं दे सकते हैं। और ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सद्गुण ही श्रेष्ठ और महान जीवन की आधारशिला है और हमारी भारतीय संस्कृति हमें एक बात बार बार सिखलाती है, सत्यता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, अहिंसा हमारे जीवन का निजी खजाना है। और ये निजी खजाना नित्य ज्ञान स्नान करने से, नित्य ज्ञान का मनन चिंतन करने से और नित्य ज्ञान का प्रकाश कहते भी है कि जहां ज्ञान का प्रकाश हो, योग का प्रसार हो, कर्म का इतिहास हो, जीवन अपने आप में निखरता चला जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे आप सबको सुनाते हुए बहुत खुशी होती है कि लाखों परिवार, लाखों भाई बहन अपने जीवन के अंदर ये सुंदर निखार पैदा करके सदाचार, स्वचिंतन के द्वारा, समर्थ चिंतन के द्वारा, सकारात्मक चिंतन के द्वारा अपने अंदर सदाचार, सद्भाव, सद्भावनाएं पैदा करके अपने जीवन को परमात्मा पिता के आगे समर्पित करके इस शुभ कार्य में लगे हुए हैं। तो मैं आप सबके लिए भी यही चाहूंगी कि अगर आप सबके अंदर ये शुभ इच्छा है तो उसके लिए कहते हैं कुछ समर्पण कर दो, कुछ स्वाहा कर दो, कुछ सफल कर लो। अब आप सोचिए समर्पण क्या करना है, भगवान को समर्पणता में क्या चाहिए? वो तो दाता है, विधाता है, भाग्य विधाता है, उसको हमारे से क्या चाहिए? परंतु वो पिता हम बच्चों से यही चाहता है कि समर्पण ईगो माइंड को कर दो, चमरी और धमरी के भान को कर दो। जिस चमरी और धमरी के भान के अंदर आप सारा दिन रहते हो और जिस ईगो माइंड के अंदर आप सारा दिन रहते हो, जिसे प्रवृत्तियां दूषित होती है, उस दूषित प्रवृत्तियों को निकालने के लिए समर्पण कर दो और स्वाहा कर क्या कर दो। चलते चलते हम लोगों के अंदर बुद्धि का अभिमान, कला का अभिमान, एजुकेशन का अभिमान और भी कई प्रकार के अभिमान सूक्ष्म रीति से जागृत हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं बच्चे इसको स्वाहा स्वाहा नित्य स्वाहा करिए, और स्वाहा करने से क्या होगा, निखार आएगा, आप में आत्म बल आएगा, जिसकी परिवर्तन की वेला में बहुत जरूरत है। हमारे अंदर आत्म बल, ज्ञान का बल, गुणों का बल, शक्तियों का बल, दुहाओं का बल चाहिए। जब तक ये बल हमारे अंदर नहीं आते, पवित्रता का बल सबसे उत्तम चाहिए, जब तक ये बल हमारे अंदर नहीं आते हैं तो ना तो हम समर्थ चिंतन की धारा को प्रवाहित कर सकते हैं और ना संसार के अंदर संशोधन ला सकते हैं, ना संसार को अच्छे संस्कार अपने से दे सकते हैं। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि थोड़ा जो परमपिता परमात्मा ने एक सहज और सरल विधि बताई है, स्वचिंतन करो। स्वचिंतन ही संसार के परिवर्तन की कला है। तो जितना स्वचिंतन करेंगे और जितना अंदर अंतर मन में ध्यान लगाकर अंतरात्मा की कुटिया में बैठकर जितना आप स्वचिंतन करेंगे, समर्थ चिंतन करेंगे, उतना सुषिप्त हुई शक्तियां जागृत होंगी और उस शक्तियों के द्वारा ही हम नव निर्वाण के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। इस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक लकड़ आ रहा था, वो रोज आना लकड़ियां काट करके अपने बच्चों का पेट पालता था। एक साधु रोज आना उनको देखते रहते थे कि ये बेचारा उतना ही लकड़ी काट सकता है, उतना ही पैसा सारा दिन में कमा सकता है जो एक दिन का गुजरान उसका हो। उनको साधु को उनके ऊपर बहुत तरस आता था। तो देखते देखते एक दिन साधु उनके पास जाकर के बोलते हैं, ये लकड़हारे तू थोड़ा अंदर जा, भीतर जा, भीतर जा। तो लकड़हारे ने सोचा ये भीतर जाने के लिए कहते हैं, तो उस जंगल के अंदर वह थोड़ा भीतर जाने लगा तो उसको चंदन के पेड़ दिखाई दिए। तो चंदन के पेड़ों को वो काट करके अपने एक मास, दो मास, चार मास का जो सामान इकट्ठा करना था वो इकट्ठा कर लिया और सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। थोड़े दिन के बाद फिर उसको संकल्प आया कि साधु के पास जाया जाए। फिर साधु ने उनको यही कहा कि भीतर जाओ, भीतर जाओ। तो जब वो भीतर गया तो उसको चांदी की खान मिली। तो वहां से उसने कुछ चांदी लेकर के फिर अपना गुजारा बहुत अच्छी तरह से किया। फिर तीसरी बार फिर उसको संकल्प आया कि फिर साधु जी के पास जाया जाए, क्या वो अब चाहते हैं? तो फिर उन्होंने कहा तुम और भीतर चला जा। तो वो और भीतर जाता है तो उसको सोने की खान मिलती है, जिससे वो प्रचुर धन सोना इकट्ठा करके ले जाता है। परंतु एक दिन सुख भोगते भोगते उसके मन में ख्याल आया कि ये क्या है, साधु जी मेरे को तो कहते भीतर जा भीतर जा और मुझे तो बहुत कुछ उपलब्ध हो गया, परंतु खुद तो एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठे रहते हैं और ये क्या है। तो वो इसी क्वेश्चन को लेकर साधु के पास गए तो कहने लगे महाराज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या क्वेश्चन है? कहा मेरे को तो आपने कहा भीतर जंगल के भीतर चले जाओ, तो मैं भीतर गया, बहुत कुछ उपलब्धियां हुई, आप क्यों वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं? दोनों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भीतर जाना भी दो प्रकार का है, एक है जंगल के भीतर जाना, एक है अपने अंदर के भीतर जाकर अपने आप को खोजना। जितना तो अपने आप को खोजेगा, जितना तो अपने आप के अंदर भीतर चला जाएगा, उतना ही तेरे अंदर अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होगी, जिससे तू जीवन मुक्त जीवन को जी सकता है। तो मेरे भाई बहनों, मैं आप सबको यही कहूंगी कि जीवन मुक्त बनने के लिए तेरा भीतर जाने का रास्ता यहाँ से सीख करके जाइए। ओम शांति शांति शांति।
आदरणीय शुक्लाबेन जी, स्वयं के भीतर जाएं, अपने अंदर संकल्प लें, क्या मैं अपने जीवन में उतारना है, कैसे आगे बढ़ना है। मुझे याद आ रहा है दादी प्रकाश मणि जी, जो संस्था की चीफ हुआ करती थी, 2007 तक वो चीफ रही। वो हमेशा कहा करती थी, जो भी आने वाले होते थे, क्या छोड़ा क्या पाया, देखो अपने अंदर। यहाँ कुछ बुराई छोड़ कर जाओ, क्या लेके जाना है सोच के गांठ बांध के ले जाओ। और मैं अब आगे बढ़ते हुए अनुरोध करना चाहती हूँ भ्राता वदूद साजीत जी से, आप एडिटर इन चीफ VNI और साथ ही साथ आप मीडिया एडवाइजर हैं, दिल्ली से पधारे हैं, आपसे अनुरोध है आए और अपने भावनाएं रखें। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा माननीय मंच से, सब संक्षिप्त में अपने भावनाएं रखेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस भगवान के नाम से जो बड़ा दयालु और बड़ा रहम वाला है। मैं कल से यहां हूं और जो कुछ महसूस कर रहा हूं वो ये है कि बाबा जी पूरी तरह से यहां मौजूद हैं। तो मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों की तरफ से आपको मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूं बाबा जी, सारी दादियों को मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूं, सारे बहनों और भाइयों को, उन करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरफ से जो आपस में जब मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब है, अस्सलामु अलैकुम का जब मैंने मतलब तलाश किया और जब मैंने ओम शांति का मतलब तलाश किया तो मुझे एक ही मिला। अस्सलामु अलैकुम इज द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ ओम शांति एंड द ओम शांति इज द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ अस्सलामु अलैकुम। And I am proud that it is what it means what to be a Muslim. When you meet another, you say Assalamu Alaikum or Om Shanti. तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मा कुमारी का, इस तंजीम का, कि जो काम हम जैसे करोड़ों लोगों को करना चाहिए था वो आपने अंजाम दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के पात्र हैं। मैं अपने दिए हुए वक्त में ही खत्म करूंगा। मैं बहुत दिनों से जानता था और पढ़ता रहता था, चूंकि बहुत छोटा सा पत्रकार हूं और 30 साल से इस मैदान में हूं, लेकिन मैंने बड़ी व्यस्तताओं के बावजूद आने का फैसला इसलिए किया। पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर कवि है अहमद फराज, उसने एक बड़ी मशहूर कविता लिखी थी। मुझे नहीं मालूम कि वो उसने किसके लिए लिखी थी, लेकिन उसकी एक पंक्ति ऐसी है जो 100% बाबा जी के लिए, दादियों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए है। मैं पेश करता हूं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं और आपके चरणों में ये सलाम में मोहब्बत पेश करता हूं। एक हदीस है प्रोफेट मोहम्मद की, जिसमें उन्होंने कहा मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। इसका मतलब यह है कि जो आपस में एक दूसरे का शुक्रिया अदा नहीं करते वो भगवान का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो इस हदीस पे आप लोग अमल कर रहे हैं पूरी तरह से, आपने एक दूसरे को जो जोड़कर और एक दूसरे में जो शुक्रिया का भाव पैदा कर दिया है, वो भाव ना किसी लालच से पैदा किया जा सकता है ना किसी खौफ से पैदा किया जा सकता है, लेकिन वो भाव आपने जिस मेहनत से पैदा किया है उसकी कोई कीमत यहां इस दुनिया में नहीं है, उसकी कीमत आपको भगवान ही देगा। एक और हदीस है, जब प्रॉफिट मोहम्मद सुबह को सोकर उठते थे तो कहते थे ए भगवान मैं गवाही देता हूं कि ये पूरी कायनात, ये यूनिवर्स, ये आपका कुनबा है, यानी पूरी कायनात अल्लाह का कुनबा है। मुझे खुशी है कि आप लोग जो यहां एक आपने एक लाइन तय की है कि सुप्रीम फादर के सब बच्चे हैं, ये वही है। मैं आपका करोड़ों लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने उसको खत्म कर दिया, आपने उसको जिंदा किया। एक बात और अर्ज करनी है, उसके बाद मैं खत्म करूंगा, 5 मिनट अभी पूरे नहीं हुए। अल्लामा इकबाल एक और बहुत बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने कहा है वजूद जन से है कायनात में रंग। मैं इसका तर्जुमा बताता हूं, यानी जो ये यूनिवर्स है इसका जो चित्र है अगर आप उसमें रंग ना भरिए तो बेकार है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसमें जो रंग है वो ये औरत है, अगर ये औरत ना होती तो ये चित्र सब बेकार था, बहुत बेकार लगता, कुछ समझ में ना आता। ये हमारी मां और बहनों की वजह से है ये पूरी कायनात जितनी खूबसूरत है, और हजारों सालों तक जुल्म होता रहा, लेकिन कमाल है बाबा जी के कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, मजबूत की, लेकिन अपना सब कुछ पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी मां और बहनों के हवाले करके बहुत बड़ा काम किया। मैं देख रहा था कि यहां आज मुझे सोलर थर्मल पावर प्लांट दिखाया गया, मैं दुनिया के शायद 30-35 देशों में गया हूं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो कुछ यहां देखा है वो कहीं नहीं देखा। आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंटायरली रन बाई अवर मदर्स एंड सिस्टर्स, उसने कमाल कर दिया। शायद पहली ऑर्गेनाइजेशन आपकी है जिसने इतना बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया है, इसके लिए आप पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। मैं एक बात और अर्ज करूंगा कि अल्लाह के रसूल प्रॉफेट मोहम्मद, जब उनकी बेटी फातिमा उनसे मिलने के लिए आती थी तो खड़े हो जाते थे और अपनी चादर फातिमा अपनी बेटी के लिए बिछा देते थे। तो इस्लाम में औरतों का इतना बड़ा स्थान है, मुझे बड़ी खुशी है, मैं सलाम करता हूं इस इतनी बड़ी महान शख्सियत को कि उसने औरतों की पावर को समझा। और हम लोग तो शोर मचाते रहते हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, नहीं, वुमन का एम्पावरमेंट तो हो चुका, अब तो हमें इस वुमेन एम्पावरमेंट से फायदा उठाना है, इसको आगे बढ़ा के इसके पीछे पीछे चलना है। सुप्रीम पावर के लिए हम लोग को कोशिशें करते हैं, हथियार हथियार बनाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत से ज्यादा बड़ा सुपर पावर कोई नहीं हो सकता जहां ब्रह्मा कुमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहां बुलाया, मौका दिया, इसके लिए भी शुक्रिया।
बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया है। आपने यहां की कार्यप्रणाली को समझा और बहनों की शक्ति को समझा। कमाल तो उस बाबा की है जिसने इतनी बड़ी लाइन खड़ी की है। उनका कितना हम शुक्रिया अदा करें जो बहनों को इतना आगे बढ़ाया है। और अब हम सब मिलकर कदम आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे, संसार को स्वर्ग बनाना है। मैं आमंत्रण दे रही हूँ अब हमारे मध्य विराजित राजीव निशाना जी, आप ग्रुप एडिटर समाचार वार्ता के हैं, आपसे अनुरोध है अपना प्रेरणाएं आप हमारे मध्य रखेंगे। राजीव निशाना जी।
ओम शांति। सबसे पहले मैं ब्रह्मा बाबा की स्थली को नमन करता हूं और उसके बाद मुझे यहां आने का जो सुअवसर दिया बहन पूनम और हमारे सुशांत भाई, जिनके कारण मैं यहां पहुंचा और शायद ये पिछले साल भी मुझे आना था, मैं अभागी रहा कि मैं पिछले साल नहीं आ पाया। बहुत बड़ी मुझे अब कमी लगती है कि मैंने शायद बहुत कुछ खो दिया। अगर मैं एक वर्ष पहले आता तो शायद जो मुझे एक वर्ष बाद आज जानने का, पहचानने का और शांति का मार्ग मिला, शायद वो एक वर्ष पहले मिल जाता। 42 साल की उम्र के अंदर मैंने पत्रकारिता की है और लगभग 25 साल से मैं पत्रकारिता के अंदर आ चुका था और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, क्योंकि क्राइम का रिपोर्टर रहा। क्राइम रिपोर्टर हर वक्त उल्टा सोचता है। जब मैं चला 26 तारीख को तो मेरे मन में कई सवाल थे और जब मैं यहां आया तो सब सवाल में भूल गया। सिर्फ मुझे दिखा तो यहां शांति, मेरे मन जिसके पास भी जाता तो वहां से एक पॉजिटिव ऊर्जा वो नजर आती मुझे। मैं जिस जगह भी गया या बहने सबसे आके जब मुझे स्वागत किया तो उससे एकदम ऐसा लगा कि अंदर मेरे बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। जो पहला टीका मेरे लगाया उससे एकदम हृदय परिवर्तन, मेरे मन के अंदर एक शांति अलग, अनुभूति अलग हुई। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे करके सब लोगों से मिलने लगा, यहां देखता हूं तो जैसा भी मेरे से पहले ही पत्रकार भाई ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा कहां कहां क्या क्या हो रहा है, और वही अनुभव मैंने किया कि मैं जब जहां जहां विजिट करने गया तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने लोगों का भोजन भी बन रहा है तो कोई आवाज तक नहीं। क्योंकि कई धार्मिक संस्थानों में मुझे जाने का मौका मिला पत्रकारिता के नाते, क्योंकि टीवी का पत्रकार हूं, तो वहां देखा कि हजारों की संख्या होते ही ऐसा हुजूम सा लगने लगता है, नेगेटिव वाइब्रेशन आने लगती है और शोर होने लगता है। लेकिन यहां 10,000 से ज्यादा की संख्या में लोग इकट्ठा हैं, उसके बावजूद भी पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो वाकई कोई चमत्कार ही है ये। मुझे इस 3 दिनों के अनुभव में 4 धाम माउंट आबू जाने का मौका मिला। जिस ही जगह गया वहां से अलग ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरी बॉडी के अंदर आई और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन लाने के बाद मुझे अनुभव हो रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ी कमी और की। मेरे दिल में था कि मैं अपने बच्चों को लेकर चलूं यहां, लेकिन शायद वो कमी रह गई और मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार को भी यहां जरूर लेकर आऊं। मैं इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं। तो अभी आपने कुछ समय पहले सुना कि विश्व का एक सर्वे आया है कि भारत दूसरे नंबर की भ्रष्ट मीडिया है, और अफसोस कि शायद हमारे पत्रकार भाइयों को भी एक बार शांति के लिए यहां आना चाहिए। अगर मन शांत होगा तो हमारा अशांत शरीर ये कहीं भी जाएगा तो शायद भ्रष्ट रास्ते की तरफ अग्रसर नहीं होगा। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी से मैं ये आग्रह करूंगा कि हमारे पत्रकार भाइयों के लिए भी, और यहां तक कि पत्रकार बनने से पहले जो पत्रकार स्थली होती है, जो कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहां जाकर भी उनको आप वर्कशॉप दें, ताकि वो सदमार्ग पे चलें, मन में शांति होगी तो यह शांति की दुनिया में हम लड़ सकते हैं, हम इस दुनिया से टक्कर ले सकते हैं। जो मोह माया की दुनिया में हम लोग रहते हैं, जीते हैं, और भ्रष्टाचार का जो एक कलंक अभी हमारे माथे पर लगा है पत्रकारों के, तो शायद वो ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा ही साफ हो पाएगा, यही मुझे लगता है। ब्रह्मा कुमारी जो मैंने अभी देखा, ये दूरदृष्टि का दूसरा नाम है। अब से 15 साल पहले सोलर एनर्जी का प्लांट यहां लगाया, जिसके बारे में आज भारत के नेता राज्य सोचने को मजबूर हैं। आज स्कीम चला रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन 15 साल पहले ये वो काम कर दिया जो आज नेता कर रहे हैं। यानी कि शांति का दूसरा नाम जो आज हमें जरूरत है, विश्व को जरूरत है, वो अब से पहले 80 साल पहले जो पौधा लगाया था। मैं सशक्त नमन करता हूं ब्रह्मा बाबा को कि शायद इसकी आज विश्व को बहुत जरूरत है। और खासकर मैं फिर कहूंगा, क्योंकि पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करता हूं मैं भारत में, उन संस्था चलाता हूं, तो मैं यही कहूंगा कि पत्रकारों के लिए भी कोई ऐसी वर्कशॉप शुरू करें, और खासकर दिल्ली में, क्योंकि पत्रकारों के पास समय बहुत कम होता है। मेरे बड़े भाई और मेरे गुरु जो इंडिया न्यूज में थे, राजीव रंजन नाग जी, वो यहां हैं, तो मैं जानता हूं कि वो बहुत पॉजिटिव आदमी हैं, और जब मुलाकात हुई तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे देखने को मिली। तो मैं जब पहली मुलाकात हुई थी इंडिया न्यूज में 2008 में, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं तो कोई कारण है कि इतने शांत व्यक्ति हैं, इनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन है, लेकिन कभी मैंने पूछा नहीं। जब यहां आकर देखा तो वो सच मेरे सामने आ गया कि वाइब्रेशन कहां से निकल रही है। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहां आने का मौका दिया, और आगे ये उम्मीद है और ये दिल से प्रण करता हूं कि मैं एक बार अपने परिवार को जरूर लेकर आऊंगा। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने सुंदर विचारों के लिए। मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूं, पत्रकार भाई बंधुओं के लिए हम 2 बार साल में कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, एक सितंबर में, एक अप्रैल मई में रखते हैं। ये तो बोनस के रूप में हमें चांस मिला हुआ है, हम सब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं। बहुत सुंदर बात है कि ये आने से ही हमारा मन शांत हो जाता है और अपने अंदर शक्ति ऊर्जा जागृत हो जाती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, कमल पर पड़े तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है। मेन बात तो है वाइब्रेशंस के, जब हम योग साधना करते हैं वो वाइब्रेशंस जागृत होते हैं। तो आइए अब चलते हैं आगे की ओर, सम्मान की ओर। हमारे भ्राता मृत्युंजय भाई सम्मान करेंगे हमारे बहुत से भाई बहनों का। एडवोकेट जया सूर्यन जी, स्वामी शैलेश्वरानंद जी, भ्राता नतेश बसवी, असिस्टेंट कमिश्नर एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैंगलोर, और इस समय भाई साहब हमारे बीच अभिनंदन सम्मान कर रहे हैं दीप कुमार उपाध्याय जी का। सब तालियों के माध्यम से अपना सम्मान प्रस्तुत करेंगे, और जिनका मैंने नाम लिया है वो भी धीरे धीरे खड़े होकर सम्मान के लिए आगे बढ़ेंगे। ताली बजाते रहेंगे, बजाते रहिए। इसमें तो हमें कितना आनंद मिलता है, प्यार आता है, सम्मान जागृत होता है, नम्रता जागृत होती है। वजूद साहब, राधा जी वजूद साहब का सम्मान कर रहे हैं। ज्ञान जी भ्राता जी से मिल रहे हैं, आपका सम्मान हो चुका है। हम सब तालियों के साथ साथ देते रहेंगे। और हमारे बीच विराजित नवाब जफर मीर अब्दुल्ला साहब, आपका भी सम्मान हो रहा है। मंच का सम्मान हो रहा है और एक एक करके सम्मान के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब तालियों के साथ साथ दे रहे हैं। और अब हमारे बीच आगे बढ़ते हुए राजा जी भीमसेन जी का सम्मान कर रहे हैं। नतेश जी का सम्मान हो चुका, भीम सिंह जी का सम्मान हो रहा है। और अब स्वामी शैलेश्वरानंद जी का सम्मान हो रहा है। आप शिव शक्ति आश्रम पीठ से हैं, हमारे पूर्व शंकराचार्य उनके साथ उनके आश्रम से आप हैं। और मैं यहाँ से अनुरोध करना चाहती हूँ, सम्मान चलता रहे, मैं अनुरोध करना चाह रही हूँ हमारे बीच विराजित आदरणीय हमारे सूरज भाई जी, जो कि बहुत अनुभवी हैं, आप सबने उनको सुना होगा समाधान के कार्यक्रम में, बहुत से लोग आपको सवाल भेजते रहते हैं, समाधान लेते रहते हैं और दिन रात आप इसी सेवा में व्यस्त रहते हैं। कैसे हर एक का जीवन खुशहाल बनाएं, आपके पास आते ही सबकी समस्याएं दूर होती हैं और ये वो अच्छी बात है जिसे मनुष्य स्वयं भी दुआएं लेता है और दुआएं देकर उन्हें उठा देते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी, मैं आपसे भी अनुरोध कर रही हूँ, आए अपने अनुभव के माध्यम से हमें दिशा निर्देश दें, आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी।
ओम शांति। सम्माननीय मंच और डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पिछले तीन दिनों से और आज भी हम सब अपनी महिमा सुन रहे हैं। सब लोग स्टेज से हमारी महिमा हमें सुना रहे हैं और हम भी खुश हो जाते हैं, परंतु खुशी यहीं तक सीमित नहीं। हम तो असलियत में खुश तब होंगे जब आप सब भी अपने परम पिता से मिलन मनाएं। मैं थोड़े ही मिनटों में आप सभी को जो यहां महिमा की जा रही है उसका बीज क्या है वो सुना देता हूं। इसी स्टेज पर निराकार परमपिता का अवतरण होता है। हमने उसको यहां आते हुए हजारों बार इन आंखों से देखा है, इसलिए ये स्थान परमात्म वाइब्रेशन से भरपूर हो गया है। जो भी यहां आएगा वो उसके प्रेम में मग्न न हो ये तो हो ही नहीं सकता। मुझसे भी बहुत भाई बहने मिलने आते रहे तीनों दिन और कहते हैं यहां बड़ा अपनापन फील होता है। क्यों न फील हो, यहां वही आता है जो बहुत भाग्यवान है। मैं झूठी महिमा नहीं कर रहा हूं, यहां वही आता है जो देव कुल की महान आत्मा है। और मैं ये कहूंगा कि यहां आकर अपने भाग्य पर आप ऐसी स्टैंप लगवा दें कि संसार में आपके भाग्य का सितारा वैसे ही चमके जैसे रात्रि में पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है। हम तो खुश सब होंगे, यहां की खुशी के पीछे स्पिरिचुअलिटी है। हमारे प्रधानमंत्री भी और इस मंच से भी कई विद्वान वक्ताओं ने ये बात कही कि ये भारत अब विश्व गुरु बनेगा और यहीं से बनेगा। मैं जोड़ देना चाहता हूं, जब पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों का मिलन हो जाता है तब ही हमारा देश संसार के लिए लाइट हाउस, ज्ञानदाता, शांति दाता बन जाता है। हम यहां से केवल शांति का संदेश नहीं देंगे, शांति के वाइब्रेशंस देकर हरेक के चित्त को शांत करते हैं। अगर आप बहुत गहराई से, जैसे बहन कह रही थी शुक्ला दीदी, भीतर जाओ, अगर आप सब भी भीतर जाएंगे तो पता चलेगा कि यहां केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी है जिसके आधार से ये विश्व बदलने ही वाला है। तो मैं आप सभी भाई बहनों से कहूंगा अपने चित्त को भी, अपनी मन बुद्धि को भी इस स्पिरिचुअलिटी से भरते चलें। ये एक दिन का काम नहीं, ये लगातार हमें करना है। और इस भारत को पुनः इतना महान बनाना है, चाहे शक्तिशाली के रूप में, चाहे संसार को ज्ञान देने के क्षेत्र में, चाहे यहाँ से शांति चारों ओर फैले, हम सबका इसमें विशेष योगदान हो। भारत कोई जमीन या मकानों का नाम नहीं है, भारत बना है हम भारतवासियों से। और किसी भी देश के मनुष्य यदि बहुत चरित्रवान होते हैं तो वो देश सबसे शक्तिशाली बन जाता है, वो देश सबसे आगे निकल जाता है। और मैं भी विदेशों में बहुत जाता हूँ, हमारे भाई साहब ने तो कहा 40 साल से वो राजदूत रहे हैं जहां तहां, मैं देखता हूँ कि जो खुशी, जो प्रेम, जो शांति, जो अध्यात्म, जो अपनापन, सहयोग हमारे देश में है वो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। तो हम एक महान देश के वासी हैं, मैं छोटी सी कहानी सुना दूं। मैं यूके में था पिछले साल, एक जगह बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा था, मैंने ऐसे ही हंसी में कह दिया हमारे देश में तो बहुत गंदगी है, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया है। आगे बैठे हुए दो तीन जो क्रिश्चियन थे, ब्रिटेन के थे, बोलने लगे, आपके देश में बाहर गंदगी है पर मन साफ है, हमारे देश में तो मन में गंदगी है। सचमुच ये सत्य है कि हम सभी महान भारत देश के वासी अब इस देश को पुनः शिखर पर ले जाएंगे, और ये भविष्य है ही, ये हमारी कल्पना नहीं, ये भगवान के महावाक्य हैं। तो मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहूंगा, आप यहां से ऐसे कुछ सूत्र ले जाएं, केवल अच्छा अच्छा कहकर न जाएं, बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति मिली, यही तीसरी न कर दें, ऐसे सूत्र लेकर जाएं, आपके परिवारों में प्रेम की गंगा बहने लगे, आपके घरों में खुशी का डांस होने लगे, सुख शांति आपके आंगन की परछाई बन जाए, शोभा बन जाए, श्रृंगार बन जाए, तो आपका यहाँ आना बहुत अधिक सार्थक हो जाएगा। बस मेरी यही शुभकामना है, आप सभी यहाँ आए हैं बहुत कुछ सीख कर जाएं और अपने जीवन को महानता से भर कर जाएं। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी जरा जाना है आज जल्दी, इसलिए आपसे विदाई भी ले लेता हूँ। ओम शांति।
सूर्य भाई का, भाई जी का हम किन शब्दों में धन्यवाद करें। गागर में सागर दे दिया, कुछ सूत्र बना कर ले जाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये सत्य है, हम नित्य 3 दिन से मेडिटेशन सेशंस कर रहे हैं मॉर्निंग में, जो कि बहुत काम के हैं हमारे। उनमें से कुछ सूत्र आप अपने लिए ले जाएं। एक बात इन्हीं के साथ मैं ऐड करूंगी, हमारी दादी जी कहा करते थे कि कम से कम दिन में एक बार आप एक व्यक्ति से तो मिलते हो, यूं तो 100 जनों से मिलते हो, लेकिन एक व्यक्ति की एक विशेषता भी देखो तो 30 दिन में 30 हो जाती है। आप अपना नजरिया बदलें और अपने अंदर विशेषताओं को देखें, उनका मनन करें, आपका जीवन सुवासित हो जाएगा। और अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रण दे रही हूँ अंबिका बहन को, जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, और वो है राजयोग का अभ्यास। राजयोग से ही हमारे जीवन सुंदर बनती है, तो मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ राजयोग का अनुभव कराने के लिए। आप बेंगलोर से पधारी हैं और वहाँ की आप सब जोन हेड हैं, आपसे अनुरोध है राजयोग के अभ्यास की ओर ले चलें अंबिका बहन जी।
ओम शांति। आदरणीय मंच और हमारे सभी आदरणीय भाई बहनों को मेरा नमन है। अब तक हम इस आवाज की दुनिया में आवाज सुन रहे थे, अभी हम चले आवाज से परे की दुनिया, साइलेंस की दुनिया में। उस परमपिता के प्रेम में हम कुछ अनुभूतियां करें। आप सब यहां से जाने के पहले मेरा नम्र निवेदन है, मेडिटेशन बहुत सहज चीज है, जिसको आप सिर्फ 2-3 बातों से साथ में लेके जाए। मेडिटेशन इज नथिंग बट शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस टू reality of the truth of eternal self, the truth of my origin, the truth of my supreme parent, the supreme father who is most loving and caring. Utna hi nahi, sahaj rajyog jo hai, sirf 3 shabdon se aap yaad rakhe sada. The step, first step of meditation is inward journey, journey within to search the truth, of myself and bringing out or channelizing my tremendous energy in a positive way. The second step of meditation is the upward journey to meet my Father, to connect to the eternal truth and tap all the powers from Him. The third step of meditation is the outward journey, the journey in this world after connection to care, to share and to inspire. The result of meditation, what we gain, to give always and to share and to inspire others to do great things. That's what our beloved Dadiji, Dadi Janakiji, always do, and she is the embodiment of the result of meditation. Abhi hum chale us satyata ke sambandh mein. हमारे प्राण प्यारे शिव बाबा जो सर्व प्राप्तियों के वरदाता है, उनसे हम कनेक्ट करें, संबंध जोड़ें और असीम प्राप्तियों से हम भरपूर हो जाएं। अपने मन बुद्धि को प्रशांत करते हुए संकल्पों की स्पीड को शांत करते विजुअलाइज करें, मैं एक आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु raise the consciousness to the forehead. Watch your thoughts. Cut down the speed of thoughts. Silence the mind. अनुभव करे मेरी मन बहुत शांत स्टिल एंड स्टेबल है. धीरे धीरे हम इस शरीर रूपी वस्त्र से न्यारे होते हुए अपने निजी धाम की ओर चले. I start my journey in a pathless path beyond the cosmos, beyond everything. The world of silence, the world of liberation. Lost in the original silence, free from all the bondages, slowly I move towards my Supreme Father, Supreme Light, Shiv Baba, who is most caring, most loving, most beloved Father of mine, who is showering all the light and might on me. I am surrounded by a cool, soothing divine light. I feel the presence of my Father. Flow of love and peace and the ray of all the powers I am in the deep embrace of divine light completely lost in divine love of my Father, long lost and now found Father to me. I am completely charged and vibrating the powerful vibrations of peace and divinity to the whole world. Slowly you can come down and stay connected with the Supreme Light. Om Shanti.
Shanti ki shakti. Isme samahi rehna. यही हर मन को बहुत भाता है. और अब हम आगे बढ़ते हैं. भ्राता नवाब जफर मीर अब्दुल्ला की तरफ. आप प्रेसिडेंट इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट के हैं. आपसे अनुरोध है आप हमें प्रेरणा दें. भ्राता नवाब जफर मीर अब्दुल्ला साहब.
ओम शांति. आदाब. मैं लखनऊ से हाजिर हुआ हूं. ऑल रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज ऑन द डायस ऑफ द डायस, दादाज दादीज पोताज पोतीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहने और भाइयों. आई एम रियली ग्रेटफुल टू ब्रह्म कुमारीज फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर द 80th एनिवर्सरी ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम कल्चरल फेस्टिवल ऑन गॉड्स विजडम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज फॉर द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. जो हालात हैं, जो कुदरत ने इंसान को पैदा किया है, इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, लेकिन इतने अरसे में जो हालात गुजरे हैं, बिल्कुल उसका उलट मामला गया है. हर तरफ जंगें हो रही हैं, दुश्मनागी हो रही है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और सुप्रीमेसी ईगो वो जो है वो गालिब है. हम लोग जो यहां पर बैठे हैं वो इंसानियत का दर्श दे रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, और वही एक रास्ता है अमन और अमान का. जो ब्रह्म कुमारीज हैं, जैसा कि अभी हमारे भाई फरमा रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन जो हमारी दीदी हैं, जो हमारी दादी हैं, दादी जानकी जो कि माशाल्लाह 102 बरस की हैं, उनको अल्लाह और सेहत दे, उनको और उम्र दराज करे, वो और सबको इंस्पायर करती रहें, और आप सबकी जो शक्ति है वो मर्दों से ज्यादा है। हम लोग जो तसव्वुर करते हैं कि पैराडाइज क्या होगी, जन्नत क्या होगी, किस तरह का वहां का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरह की सफाई और सुथराई होगी, क्या हाइजीनिक कंडीशंस होंगी, तो यहां आके मैंने आबू में ब्रह्म कुमारीज की इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखा कि जन्नत जो हम तसव्वुर करते हैं कि वहां होगी, वो यहां दुनिया में नजर आ रही है कि यहां पर हर चीज एक कुदरत का रूहानी इंतजाम है जो कि कर रहा है। न यहां पुलिस है, न यहां डंडा है, न यहां सीटी है, न यहां सिग्नल है, यहां सेल्फ डिसिप्लिन है। वो हर एक दूसरे की मदद कर रहा है, हर एक के चेहरे पर खुशी है, हर एक का कॉन्शियस जो है वो बहुत ही सुकून से है। यहां पर अगर नाश्ता करने के लिए जाते हैं, लंच के लिए जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं, एक से एक नेमतें जो आप तसव्वुर कर सकते हैं वो आपको सर्व हो रही हैं। जो लोग सर्व कर रहे हैं वो नहीं है कि वो पेड कोई सर्वेंट्स हों, वो खुद अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं, अच्छी तालीम वाले हैं, अच्छे ओहदों पर हैं, लेकिन एक खिदमत खल्क कर रहे हैं और आपकी खिदमत में वो पेश हैं। आप अपनी खुराक से ज्यादा खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि और लीजिए और लीजिए। तो यहां पर ये जो हम देख रहे हैं कि जो इंसान एक तसव्वुर करता है कि क्या हमें होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब यहां पर मौजूद है। यही नहीं, आपका यही स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है और 25-30 हजार इंसान जो है वो यहां के ऊपर आ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए। एंड दिस फीचर्स इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। हमें बताया गया कि दिस फ्लोर वॉज नॉट रेडी टिल द लास्ट डे। एक दिन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके इस फ्लोर को इन्होंने पूरा बना लिया। तो ये अल्लाह की रूहानी ताकतें अगर शामिल ना हो तो ये इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि ये सब मुमकिन हो सके। और ये ताकत जो है, जैसा कि दादाजी को हम तसव्वुर करते हैं कि वो आते हैं, लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, मैं तो ये देख रहा हूं कि जो ब्रह्म कुमारीज के जो उसूल हैं, जो इस्लाम के उसूल हैं, उससे जो फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम हैं, उससे बहुत मिलते हैं। इस्लाम के 5 फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर इस्लाम कायम है। दीज आर द पिलर्स ऑफ इस्लाम। पहला है तौहीद। तौहीद इज वननेस ऑफ गॉड। अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह सिर्फ इस अल्लाह के। फिर मैसेंजर्स ऑफ गॉड का तस्करा आता है, मोहम्मदन रसूलुल्लाह, मोहम्मद उसके रसूल हैं। जिस तरह से हम यहां के ऊपर स्टेप्स बाय स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि जैसे दादाजी आते हैं वो एक सीढ़ी है, मोहम्मदन रसूलुल्लाह, अली अन वलीउल्लाह, वसीओ रसूलुल्लाह व खलीफतहू बिला फासल। और अली रसूल के वली हैं और उनमें कोई फासला नहीं है। यही हम देख रहे हैं कि तौहीद यानी वननेस ऑफ गॉड, अदल इंसाफ, अल्लाह जो है वो जस्ट है, वो किसी से बायस नहीं करता। जितने भी उसके बंदे हैं वो एक जैसे हैं, जैसे ब्रह्म कुमारीज में है, जो भी यहां के ऊपर हैं सब उनके भाई हैं, उनकी बहनें हैं, और उसमें कोई तफरीका नहीं है। हर एक दूसरे से मोहब्बत कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है। इमामत, उसके बाद में फिर कयामत, द डे ऑफ जजमेंट। हमें उस जजमेंट के तैयार रहना चाहिए। कुदरत ने जो हमें नवादरात दिए हैं, जो नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, मीरनीस ने एक रूहानी रुबाई मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, पेश करता हूं, क्या खूब कही है कि वॉट एवर इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, हर क्रिएशन जो है वो उसी की दुआ कर रहा है, उसी की मदह और सना कर रहा है, उसी की तस्बीह पढ़ रहा है, उसी की माला जप रहा है। फरमाते हैं, गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की जुबा पर गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूं बू तेरी है। फिर कुर्बानी आती है, जिस तरह से कल हमने एक प्ले देखा कि दादा लेखराज साहब को कितनी जहमतें उठाना पड़ी, इसी तरह से जितने भी मैसेंजर्स ऑफ गॉड आए, उन्होंने इस दुनिया में अपने ही बंदों के जरिए, जिनकी वो इस्लाह करने के लिए आए थे, उन्हीं के जरियों से काफी जहमतें उठाई। और सन 61 हिजरी में एक वाकया हुआ, एक वक्त आया कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो नवासे थे, ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, द सन ऑफ हजरत अली, द हस्बैंड ऑफ जनाब फातिमा, एंड वो मैदान करबला में आते हैं। और यजीद जो उस वक्त का सीरिया का बादशाह है, उसकी टेरिटरी इतनी बड़ी है, उसकी सल्तनत इतनी बड़ी है कि आज के 28 मुल्क उसमें समा जाएं, वो बहुत करप्ट है, बहुत जालिम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो स्पिरिचुअल इमाम हैं। यजीद चाहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे बैत कर लें, उससे कॉम्प्रोमाइज कर लें, उससे हाथ मिला लें, ताकि यजीद जो कुछ भी गलत काम करे वो इस्लाम के दायरे में सही समझा जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटवा दिया लेकिन सर झुकाया नहीं, और आने वाली नस्लों को उन्होंने एक मैसेज दी, जीने का एक तरीका बताया कि जो मजलूम हैं, जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो कमजोर हैं, उनकी मदद करो, उनकी हिमायत करो, और जो जालिम हैं और जाबिर हैं, खुद हक पर रह के और साबित कदम रह के उनका मुकाबला करो, और इंसानियत से पेश आओ, हमदर्दी के साथ पेश आओ और एक इंसान बनो। तो ये मीर अनीस, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शहीद हैं, उनके लिए खुद अपने लिए एक दुआ करते हैं उनकी मोहब्बत में, जैसे हम बाबा जी के लिए अपनी अकीदत पेश करते हैं। वो फरमाते हैं कि या रब मेरे मरने को फसाना कर दे, या रब मेरे मरने को फसाना कर दे, सिमते शहे मजलूम रवाना कर दे, हसरत है कि हूं दफ्न तहे खाके शिफा, मिट्टी मेरी तस्बी का दाना कर दे। यह है स्पिरिचुअलिज्म, यह है अकीदत। एक चीज आखिर में मैं एक रुबाई मीर अनीस की फिर पढ़ूंगा, जो कि सबके लिए है। इंसान जो इस मिट्टी से बना है, अल्टीमेटली उसको इस मिट्टी ही में मिल जाना है, न वो कुछ लाया था न कुछ लेके जाएगा, लेकिन जो वो उसके साथ जाएगा वो है उसके आमाल, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर, उसकी अच्छी डीड, जो यहां पर उसने अच्छे काम किए हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं, ये साथ में जाएगा, और तभी हिसाब व किताब होगा और बैलेंस शीट बनेगी, तब उसका सिला मिलेगा, या तो जन्नत मिलेगी या दोजख मिलेगा। अ पर्सन वुड गो टू द पैराडाइज और ही वुड बी थ्रोन इन टू द हेल। तो मीर अनीस फरमाते हैं, लहत कहते हैं कब्र को, द ग्रेव, आगोश कहते हैं लैप को, जुज माने ओनली। फरमाते हैं कि आगोश लहत में जब के सोना होगा, आगोश लहत में जब के सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आ कौन होएगा अनीस, हम होएंगे और कब्र का कोना होगा। कहने का मकसद यह है कि हम अपने कैरेक्टर को, अपने आमाल को सही रखें, जो मजलूम है उनकी मदद करें, जो जालिम है उनका मुकाबला करें, इंसान से इंसानियत से पेश आएं, जिस तरह से यहां पर ये माहौल है ये बरकरार रहे। और आखिर में मैं खुदावंदे आलम से यही दुआ करूंगा कि ब्रह्म कुमारीज, उनका नाम जैसे 137 कंट्रीज में है, पूरी दुनिया में रोशन हो, अमन व अमान चारों तरफ फैले, ये जंग तशद्दुद कत्ल और गारत खत्म हो, और हम सब एक ग्लोबल पूरी एक कॉन्फ्रेंस हो, उसमें शरीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुंदर विचारों के लिए। ये बात सत्य है, इंसान पैदा मोहब्बत के लिए हुआ है, प्रेम देने के लिए हुआ है, उसके लिए कैरेक्टर चाहिए। संस्था की भी ये विशेषता कहूं या संस्था का लक्ष्य कहूं, यहां पर हम सिखाते हैं, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो जाए, अर्थात गुणों से संपन्न चरित्रवान मनुष्य बन जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हुए आमंत्रण दे रहे हैं, हमारे बीच विराजित है आदरणीय राजयोगिनी रानी बहन जी और आप बिहार से पधारी हैं और वहां के आप जोनल हेड हैं और मैं तो कहूंगी पिछले 60 वर्षों से आपका राजयोग का अभ्यास है। आपसे अनुरोध है आप अपने शुभ भावनाएं हमें प्रदान करें, प्रेरणा दें। आदरणीय राजयोगिनी रानी बहन जी सब तालियों के साथ आह्वान करेंगे बहन जी का।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे दैवी भ्राताएं, बहन जी, सभा में उपस्थित भाई और बहनों, आज बहुत खुशी का दिन है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 80 वर्ष पूरे करके विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का कार्य जो कर रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी शक्ति आध्यात्मिकता की शक्ति है। आज सारे संसार में भौतिकवाद है, मनुष्य सुखी रहने के लिए साधनों की खोज करता है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी आत्मिक शक्ति की अनुभूति कराई है। केवल आत्मा का ज्ञान नहीं दिया है, आत्म अनुभूति कराई है कि मैं पंच तत्वों से बना ये भौतिक शरीर नहीं, मैं अमर सत्य चैतन्य आत्मा हूं। इसकी अनुभूति हो जाने से हम आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बन सकते हैं, क्योंकि आत्मा का संबंध उस सुप्रीम पावर परमात्मा से है। जब वो संबंध जुट जाता है तो परमात्म शक्ति हमारे अंदर काम करती है। वो परमात्म शक्ति हर एक आत्मा के प्रति धर्म भेद, भाषा भेद, जाति भेद, सब भेद भाव से परे ले जाती है, सबका गुण दर्शन कराती है। इसलिए आपस में प्रेम रहना आसान हो जाता है। दादी अपना अनुभव सुनाती हैं, किसी ने हमारी दादी प्रकाशमणि जी से पूछा, कहा कि इतनी बड़ी संस्था का आप संचालन करते हैं, आपको नींद नहीं आती होगी, बहुत समस्याएं आती होगी आपके सामने इस सब का संचालन करने में। दादी ने जवाब दिया, मेरा सारा कार्य प्रेम और शांति से हो जाता है, मेरी बात सब प्रेम और शांति से मान लेते हैं, इसलिए मुझे कभी भी कठिनाई महसूस ही नहीं होती। दूसरी बात दादी ने कही कि मैं अपने आप को हेड समझती नहीं हूं, चलाने वाला चला रहा है, हमारी दृष्टि हर समय उन पर है, इसलिए हमें कभी असुविधा नहीं होती। ये है आध्यात्मिक शक्ति। दादी जानकी जी ने अपना अनुभव सुनाया, कहा एक पत्रकार ने पूछा कि दादी कोई ऐसी एक बात बताइए जिस जब आपको किसी बात से ठेस लगी हो, मन को चोट लगी हो, मन को कष्ट हुआ हो, ऐसी कोई एक घटना सुना दीजिए। दादी सोचने लगी और उन्होंने कहा, मुझे तो कोई बात याद नहीं आ रही है, एक ही बात याद आती है, हर बार उसने पार उतारा, हर बार उसने पार उतारा, ये याद है। क्या समस्या आई वो याद नहीं है, पार उतारा ये याद है। परमात्म शक्ति अगर हमारे आंखों में बसी रहे, हमारा मन उनका हाथ और साथ पकड़ ले, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। मैं इस संस्था में आई मेरी उम्र 6 वर्ष की थी और इतने वर्ष इस सेवा के क्षेत्र में भी मैं 12 वर्ष की आयु से आई। आज तक ये यात्रा इतनी निर्विघ्न, इतनी प्रेममय, इतनी आनंदमय, इतनी सुखमय, उस यात्रा का राज क्या है? वो है ये आध्यात्मिक शक्ति, वो है परमात्मा से संबंध जोड़कर, उनका हाथ पकड़कर, उनका हाथ अपने सर पर हमेशा अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए जब हर कदम उठाते हैं तो ऐसा अनुभव होता है हम चल नहीं रहे, वो हमको चला रहा है, वो हमें कदम कदम गाइड कर रहा है। इस प्रकार से हमारी आप सभी के लिए शुभावना है कि परमात्मा का हाथ और साथ पकड़ लें, हमेशा उनके हाथ में हाथ रहे, उनका हाथ अपने सर पर अनुभव करें। हम उनके बच्चे हैं, वो हमारी पालना कर रहा है, जैसे माता पिता बच्चों की पालना करते हैं, परवरिश करते हैं कितने प्यार से, ऐसे परमात्मा हमें ये अनुभव ही नहीं होने देते कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ त्याग तपस्या सेवा, शब्दों में कितने बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन अनुभव ही नहीं होने देते कि हम कुछ कर रहे हैं। इसका कारण ये राजयोग की शक्ति है, ये प्रभु प्रेम की शक्ति है जो सारे संसार के लिए मन में प्रेम का भाव जागृत कर देती है। ये प्रेम की शक्ति ही समाज कल्याण का कार्य कर सकती है। परमात्मा को प्रेम का सागर कहा गया, उन्होंने हमारे अंदर जो प्रेम की शक्ति जगाई उसके नाम है दया, कृपा, करुणा, क्षमा, सहानुभूति, सहयोग, इन सबको मिलाकर एक नाम है प्रेम। आज समाज को इसी की जरूरत है, कोई कैसा भी हो हमारे अंदर दया भाव हो, कृपा दृष्टि हो, सहयोग की भावना हो, सहानुभूति हो, करुणामय हो, तब हम उनको राहत दे सकते हैं, उनको सुख पहुंचा सकते हैं, उन्हें परमात्मा मिलन करा सकते हैं। हमारी आप सब से ये शुभावना है कि आप सभी भी इन शक्तियों से संपन्न हो जाएं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी, रानी बहन जी। सभी से मैं अनुरोध करती हूँ 5 मिनट और बैठे रहें, कोई भी उठेगा नहीं। बहुत सुंदर एक गीत है, मैं कहूंगी जरूर आप सुनिएगा। मुझे शब्द याद आ रहे थे जब बहन जी भाषण कर रहे थे, आपको अपने विचार सुना रहे थे कि समस्याओं से कह दो, समस्याएं बड़ी नहीं लेकिन मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, समस्याएं तो बहुत छोटी हैं, उसका हाथ अपने ऊपर रख लो, उसका साथ ले लो तो समस्याएं नीचे रह जाएंगी, खुदा आपके साथ है, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और अब मैं आगे बढ़ते हुए अनुरोध करना चाह रही हूँ पुनः भ्राता दीप कुमार उपाध्याय जी जो एम्बेसडर नेपाल के इंडिया में है, आप संस्था के लिए कुछ सप्रेम सौगात देना चाहते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है आप हमारे आदरणीय शुक्ला बेन जी को संस्था के लिए दे करके सम्मानित कर सकते हैं। और साथ साथ मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रण करना चाहती हूँ, हमारे बीच राजयोगी हरिलाल भाई जी पधारे हैं, बैठे हैं, आप गॉडलीवुड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपसे अनुरोध है आप अपना सबको धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। इधर दूसरी ओर एक आपसे पहले से ही अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, जब तक हरिलाल भाई जी शुरू करें उससे पूर्व, कि 1 बजे सौगात कॉन्फ्रेंस हॉल में जो भी हमारे गेस्ट जिन्हें सौगात नहीं मिली है या सेवाधारी जिन्हें सौगात नहीं मिली है वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर अपनी सौगात लेंगे। और अब मैं अनुरोध कर रही हूँ भ्राता हरिलाल भाई जी से धन्यवाद प्रस्ताव रखें।
ओम शांति। सभा में सदैव वोट ऑफ थैंक्स का कार्य कठिन होता है। करीब 3 घंटों से आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसलिए आप सभी का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आप सभी का पहले तय दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप 3 घंटों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। धन्यवाद की श्रृंखला में शुरुआत तो आदरणीय दादी जी जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें प्रेरित किया और पूरी तरह से सफल बनाने में हमें पूरा इंस्पायर किया, मैं दादी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे सीनियर ब्रदर्स मृत्युंजय भाई, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज की सभा में उपस्थित आदरणीय रानीबेन जी, शुक्लाबेन जी, अंबिकाबेन जी और डॉक्टर सविताबेन भी थी, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ में इस एक्सलेंसी दीप कुमार उपाध्याय जी जो एम्बेसडर नेपाल से पधारे हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भीमसेन दास प्रधान जी, श्री अशोक कुमार जी, नवाब जाफर मीर साहब, वदूत सजीत साहब और राजीव जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस आज के कार्यक्रम में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिन गायक ने गीत गाए, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अंत में आप सभी का फिर से एक बार इस 80वीं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जयंती पर आप पधारे, इसलिए आप सबका भी धन्यवाद। ओम शांति।
सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठने के बाद उठेंगे। शाम को 5 बजे सत्र यहीं प्रारंभ होगा। सिर्फ 2 मिनट जहां भी बैठे हैं बैठें और फिर उठेंगे। ओम शांति।
आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम। तूफान दे खुदा।